उस अयोध्या में जहां अनंतानंद तीर्थंकर भगवान जन्मे, वहीं अनेकानेक चक्रवर्तियों का भी जन्म हुआ और चक्रवर्तियों में प्रथम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी हुए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चक्रवर्ती भरत की बातें सुनते हैं तो वास्तव में रोमांच होता है। आपने बहुत कुछ जाना कि भरत ने किस तरह से शुभ योग शुभ नक्षत्र में जन्म लेकर अपने चक्रवर्तित्व को धन्य किया। 60,000 वर्षों तक 6 खंड की वसुधा को जीत कर वे चक्रवर्ती बने। भगवान ऋषभदेव के समोह शरण में इतनी भक्ति की कि उन्हें समोह शरण का प्रमुख श्रोता का पद प्राप्त हुआ और भगवान ऋषभदेव की दिव्य भक्ति करने के कारण उन्हें अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया था। भरत को अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे भरत महाराज सुखपूर्वक अपने राज्य में थे। अनेक प्रकार की क्रियाओं को उन्होंने विप्रवर को बताया और सारी जनता के लिए उन्होंने गर्भान्वय की 53 क्रियाएं, दीक्षान्वय की 48 क्रियाएं, कर्तृन्वय की 7 क्रियाएं सप्त परम स्थान के रूप में बताया। यानी ये जीव गर्भ में आने के बाद किस तरह से एक एक संस्कार को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना करके निर्वाण पद तक को प्राप्त करने की योग्यता अपने अंदर रखता। ऐसे भरत महाराज केवल राज्य ही नहीं करते थे, केवल दिन भर राजकाज की बातें नहीं करते थे, समय समय पर प्रजा को संबोधित करते थे, उनके साथ मनोरंजन भी करते थे, अपनी रानियों के साथ भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे, अपने संख्याकों पुत्र पुत्रियों के साथ में भी वन क्रीड़ा जल क्रीड़ा आदि करके और सब को सारी विद्याओं में निपुण भी उन्होंने बनाया था। एक दिन की बात है, जिन पूजा और दान में सतत प्रवृत्ति करते हुए चक्रवर्ती भरत अपना बहुत सा समय सुख पूर्वक बिता रहे थे। पेज नंबर 192 पर आ जाए। भरत का भारत जो पुस्तक आप लोगों ने हस्तिनापुर से मंगाई है, खूब स्वाध्याय कीजिए। कम से कम इतना कर लीजिए कि भारत का भारत इस पुस्तक का स्वाध्याय करते करते आपके मन में आ जाए कि हम संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं बसने पाए और हम संसार से विरक्ति का भी पाठ पढ़ें। तो भरत महाराज सुखपूर्वक अपने दिनों को व्यतीत कर रहे थे। इसी मध्य क्या होता है, एक बार रात में उन्होंने कुछ विशेष स्वप्न देखे, सपने देखे। उनकी मां ने सपने देखे थे जब भरत गर्भ में आए थे, 6 सपने देखे थे और उनके पिता ऋषभदेव को जन्म देने वाली माता मरुदेवी ने भी 16 सपने देखे थे। अब एक दिन भरत जी ने एक नहीं दो नहीं 16 सपने देखे और एकदम उनकी निद्रा भंग हो गई। तभी वे कुछ खेद खिन्न हुए, कुछ सपना खुशियां बताने वाले थे, कुछ दुख को प्रदर्शित करने वाले ऐसे लग रहे थे। तो भरत खेद खिन्न हुई और वो सोचने लग गए कि ये मुझे जा करके अपने पिता केवली भगवान ऋषभदेव के समक्ष कहना है और उनका फल भी पूछना है, क्योंकि ये स्वप्न मुझे प्रायः बुरे फल देने वाले जान पड़ते हैं और साथ में ये भी लगता है के स्वप्न कुछ दूर आगे के पंचम काल में फल देने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ इस समय भगवान ऋषभ देव के प्रकाश मान रहते हुए प्रजा को इस प्रकार उपद्रव होना कैसे संभव है जब भगवान साक्षात विराजमान है। यहाँ सदाचार ही सदाचार चल रहा है, यहाँ दुराचार यहाँ अनाचार कैसे आ जाएगा। स्वप्नों से जो कुछ फलित हो रहा है इसका मतलब ये है आगे इनका फल कुछ होगा। तो वो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और भगवान ऋषभ देव के समोसरण में पहुंचते हैं। वहां समोसरण की प्रत्येक भूमि का उल्लंघन करते हुए चलते चले जाते हैं। गलियों में से धूली साल पर कोटा को पार करके और क्रम क्रम से मानस स्तंभ चैत्य वृक्ष स्तूप आदि की पूजा करते हुए भगवान की गंध कुटी के पास पहुंच गए। समोसरण के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत की तरह ऊंची गंध कुटी होती है और उसके बीचों बीच में कमलासन के ऊपर सिंहासन होता है। सिंहासन के ऊपर भगवान चार अंगुलधर विराजमान रहते हैं। उनके पास पहुंचे भरत, भगवान की खूब पूजा स्तुति करी, उसके बाद अपने मनुष्यों के कोठे में बैठ गए। इन्हें भरत ने 16 स्वप्न देखे और उन स्वप्नों का फल पूछने के लिए वे समोसरण में पहुंचते हैं। और समोसरण में आपको हमने बताया था कि चक्रवर्ती अगर असमय में भी पहुंच जाए तो उनका पुण्य होता है कि असमय में भी भगवान की दीर्घनी खिर जाती है। वैसे चार ग्रह में चार समय खिरती है, लेकिन कोई विशेष लोग पहुंच जाए तो चक्रवर्ती तो विशेष में भी विशेष थे, वे पहुंचे तो भगवान की दीर्घनि खिरे। उससे पहले वे उनकी चरणों में निवेदन करने लग गए, हे भगवान आपके द्वारा जो हमें उपासकाध्ययन सूत्र प्राप्त हुआ था उसके अनुसार हमने गृहस्थों के आचरण के लिए कुछ सृष्टि व्यवस्था बनाई है और भगवान मैं आपसे इसके बारे में भी पूछने आया हूँ कि जो कुछ हमने सृष्टि की कुछ नई व्यवस्था बनाई है उसका फल क्या होगा। और इसके साथ आप बताइए, आज मैंने रात में 16 सपने देखे हैं। गणधर स्वामी ने पूछा, प्रसव सेन गणधर ने, भरत बताओ तुमने कौन कौन से स्वप्न देखे हैं। तो भरत जी कहते हैं, प्रथम स्वप्न में मैंने 23 सिंह देखे हैं, शेर। दूसरे स्वप्न में सिंह के बच्चे पीछे चलते हुए हिरणों का समूह है। और तीसरे स्वप्न में हाथी के योग्य भार को घोड़े पर देखा है। और चौथे स्वप्न में बकरों का झुंड सूखे पत्ते खाते हुए देखा है। पांचवें स्वप्न में हाथी के कंधे पर बंदर बैठे हुए हैं। छठे स्वप्न में कौओं के द्वारा उल्लू को त्रास दिया जा रहा है, कष्ट दिया जा रहा है, ये देखा है। सातवें स्वप्न में नाचते हुए बहुत सारे भूत देखे हैं। आठवें स्वप्न में तालाब का मध्य भाग सूखा हुआ देखा है हमने। नौवें स्वप्न में धूली से मलिन रत्न देखे हैं हमने। दसवें स्वप्न में कुत्ते को नैवेद्य खाते हुए देखा है, हे भगवान। ग्यारहवें स्वप्न में मैंने ऊंचे स्वर में शब्द से विचरण करता हुआ तरुण बैल देखा है, एकदम युवा बैल देखा है। बारहवें स्वप्न में परिमंडल से घिरा हुआ चंद्रमा देखा है। तेरहवें स्वप्न में परस्पर में मिलकर जाते हुए दो बैल देखे हैं। चौदहवें स्वप्न में मेघों से ढका हुआ सूर्य देखा है। पंद्रहवें स्वप्न में सूखा वृक्ष और सोलहवें स्वप्न में जीर्ण पत्तों को देखा है। हे स्वामी इसका फल क्या होगा। हे भगवान मुझे सुबह से बहुत ही खेद खिन्नता है और इनके फल जानने की तीव्र इच्छा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपया इनका फल बना बता करके मुझे संतुष्ट कीजिए। यद्यपि निधियों के अधिपति चक्रवर्ती भरत उसी समय प्रकट हुए अपने अवधिक ज्ञान से उन प्रश्नों का फल जानने में निपुण थे, फिर भी विनय गुण की अधिकता से तथा सभा में सभी लोग इन बातों को अच्छी तरह जान लेवे इस अभिप्राय से वे प्रश्न कर रहे थे। इनका प्रश्न होने के बाद जगत गुरु ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि घिरने लगी। भगवान ने कहा, जो कुछ दिव्य ध्वनि में उसको गणधर स्वामी एक्सप्लेन करते हैं और वो कहते हैं, हे वत्स, आपने जो सृष्टि में थोड़ा परिवर्तन किया है वो गलत हो गया है। आज इसका फल नहीं दिखेगा, आगे जाकर जब कलयुग आएगा, पंचम काल आएगा, तो कुछ इनका गलत असर देखा जाएगा। अब सुनो, तुमने जो 16 स्वप्न देखे हैं, पहले सपने में 23 सिंह जो देखा है उसका मतलब है कि महावीर स्वामी को छोड़कर शेष 23 तीर्थंकरों के समय में दुष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी, यानी सब लोग सरलता के साथ भगवान की वाणी को मानते रहेंगे। लेकिन महावीर भगवान के समय कुछ लोग ऐसे वैसे हो जाएंगे जो बातों का बुरा भी मानेंगे, अपनी अपनी बात को खींच करके चलेंगे। दूसरे स्वप्न में जो आपने अकेले से हूं के बच्चे के पीछे चलते हुए हिरणों का समूह देखा है, उसका फल है कि महावीर स्वामी के तीर्थ में परिग्रह को धारण करने वाले कुछ लोग उत्पन्न हो जाएंगे। यद्यपि निर्ग्रंथ मार्ग है, निष्परिग्रह मार्ग है, फिर भी आपका स्वप्न ये बता रहा है। तीसरे स्वप्न में बड़े हाथी के योग्य भार को घोड़े की पीठ पर लगा हुआ देखा है, जो उससे उसकी पीठ झुक गई है। इसका फल ये है कि पंचम काल में साधु तपश्चरण के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और उनके मूल गुण और उत्तर गुणों में दोष भी लगने लग जाएगा। कभी कुछ श्रावकों के निमित्त से, कभी प्रभावना के निमित्त से, तो इस तरह वे अपने क्रियाओं को, अपने मूल गुणों को पालन करने में आलसी हो जाएंगे। कोई उन्हें मूल से ही भंग कर देंगे और कोई उनमें दोष लगाएंगे, ये भगवान ने बताया। अब इसके बाद चौथे सपने में जो बकरों का समूह सूखे पत्ते खा रहा है, उसका फल है कि आगामी काल में मनुष्यों का सदाचार समाप्त होने लगेगा, लोग दुराचारी बनने लगेंगे। ऐसे ही प्रश्नों की सपनों के फल बताते चले गए। धूल से मलिन रत्न राशि जो देखी है, उसका फल है कि पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि नहीं होंगे। मुनि तो होंगे लेकिन उनके रिद्धियां नहीं होंगी, क्योंकि उनका हीन संगनन रहेगा। आदर सत्कार से जिसकी पूजा की गई, ये सब चीजें देखा है, तो इनका भी फल थोड़ा सा गड़बड़ है। ऊंचे स्वर से बैल जो आवाज करता हुआ देखा है, इसका मतलब ये है तरुण अवस्था में लोग मुनि पद को धारण करेंगे, मुनि आदिकाय बनेंगे। तो ये आज हमें दिख ही रहा है कि इस पंचम काल के अंदर युवावस्था में भी मुनि आरिकाओं के व्रत लोग धारण कर रहे हैं। और परिमंडल से गिरे हुए चंद्रमा को देखा है, जो उससे पंचम काल में मुनियों को अवधिक ज्ञान मना परिज्ञान नहीं होगा। और परस्पर में मिलकर जाते हुए बैलों को जो देखा, बैलों की जोड़ी, इसका मतलब पंचम काल में अकेले मुनि विचरण नहीं करेंगे, दो या तीन मिल करके करेंगे। और इसीलिए कुंद स्वामी ने कहा है देखो कि मेरा शत्रु भी पंचम काल में एकाकी विचरण ना करे। ये सपनों का फल चल रहा है। भरत के सपने, इनकी माता के सपने तो इनके उत्पन्न होने की वीरता के चक्रवर्तित्व को बता रहे थे, लेकिन भरत के सपनों का फल ये सदाचार दुराचार से संबंधित था। अब आगे कहते हैं, सूर्य मेघों के आवरण से ढक गया है, ये स्वप्न का फल है कि पंचम काल में केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा। आज किसी को केवल ज्ञान होता नहीं, भगवान हो ही नहीं है। छाया रही जो सूखा वृक्ष देखा आपने, इससे ये है कि स्त्री पुरुषों का चरित्र भी भ्रष्ट होने लगेगा, दुराचार पनपने लगेगा। 16वें स्वप्न में जीर्ण पत्तों का समूह देखा है, इससे जो है महा औषधियों का रस नष्ट हो जाएगा। ये नीरस हो जाने से रोग आदि को नष्ट करने में पूर्णतया समर्थ नहीं हो पाएंगे, सामने ही दिख रहा है। केमिकल की दवाइयां चल रही हैं, आयुर्वेद जड़ी बूटियां नष्ट हो रही हैं, या उनका फल बहुत कम होने लग गया। ज्यादा देर से ये फल देती हैं तो लोग आज एलोपैथी दवा में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो महानुभाव, ऐसे स्वप्नों का फल कब बताया था? करोड़ों साल पहले भगवान ऋषभदेव ने भरत को बताया था कि इन स्वप्न के फलों को हे वत्स तू दूर विपाकी समझ। दूर विपाकी मतलब आगे ही जाकर के पंचम काल में फल देने वाले होंगे। अभी चतुर्थ काल में शासन चलेगा 23 तीर्थंकर तक, तो यहाँ तो खूब अच्छा धर्म का सूर्य रहेगा, उसके प्रकाश में सब लोग अपने मन को प्रकाशित करेंगे। इसलिए हे भरत मुझसे इन स्वप्नों का यथार्थ फल समझकर तू समस्त विघ्नों की शांति के लिए धर्म में अपनी बुद्धि लगा ले। तो भरत ने उन सपनों का फल जान लिया, संतुष्ट हुए और कहते हैं कि जा करके उन्होंने भगवान की वाणी के आधार पर जो कुछ सुना था उन दुःस्वप्नों के पूरे फल हमारे सामने न आए, इसके लिए जा करके उन्होंने खोटे सपनों से होने वाले अनिष्ट की शांति के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया, महाभिषेक किया, खूब पूजा की, महर्षियों की पूजा की, उत्तम पात्रों को दान दिया, अनेक प्रकार की पुण्य क्रियाओं के द्वारा शांति कर्म किया। जब भी कोई खराब सपना आता है ना तो कहा जाता है शांति विधान कर लो, शांति धारा कर लो, शांति मंत्र का जाप कर लो, ये सब शांति के लिए भरत ने किया था। आप सबको भी जानना है ये स्वप्न। जब मैंने इस भरत का भारत नाम की पुस्तक में पढ़ा, पूज्यगणनी ज्ञानमती माता ने महापुराण का आलोडन करके जो एक समुद्र की तरह है उसका मंथन करके छोटे से उपन्यास में सारा सार भर दिया। और सार में भी सार सुनिएगा, ऋषभ देव कह गई भरत से ऐसा कलयुग आएगा, सदाचार को तज कर मानो दुराचार अपनाएगा। ऋषभ देव कह गए भरत से ऐसा कलयुग आएगा, सदाचार को तज कर मानो दुराचार अपनाएगा। तब भरत बहुत चिंतित हो जाते हैं, बोले भरत प्रभु क्या जग में धर्म कर्म नष्ट जाएगा, बोले भरत प्रभु क्या जग से धर्म कर्म नष्ट जाएगा, नहीं भरत कलयुग के अंत तक धर्म भी अलख जगाएगा, नहीं भरत कलयुग के अंत तक धर्म भी अलख जगाएगा। तब भरत को संतुष्टि हुई, कलयुग के अंत तक भले ही महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद अनेक प्रकार से लोगों में दुराचार पनपने लगेगा, लेकिन भरत समझो पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि होंगे, मोक्ष मार्ग चलेगा, सदाचार दुराचार दोनों चलेंगे, सदाचारी भी होंगे और उनके सदाचार के बल पर धर्म और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा भी रहेगा। ऐसे प्रश्न उत्तर स्वप्न और स्वप्न के फलों के द्वारा रोमांचक प्रकरण सुन करके आप सबको भी समझना है कि हम ऐसे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें कि अच्छे अच्छे सपने आए, और कभी दुःस्वप्न आ जाए तो समझो शांति मंत्र का जाप कर लेना, शांति विधान कर लेना, मन विचलित होने लगे तो गुरुओं का स्मरण कर लेना और घर में बैठ करके ओम रिंची शांति नाथाय नमः जाप कर लेना, जिससे सारे दुष्कर्म शांत होंगे, आपका मन शांत होगा, आपके कर्म अच्छे बनेंगे। तो आप सबको यही ध्यान रखना है कि लोग कहते हैं कि स्वप्न कभी साकार नहीं होते और सपनों के कोई आकार नहीं होते, लेकिन महापुरुषों के सपनों के आकार भी होते हैं और वे स्वप्न साकार भी होते हैं। माता के स्वप्न साकार हुए, भरत की माँ के स्वप्न साकार हुए और भरत के सपने स्वयं में साकार होकर के आज भी दिख रहे हैं उनके फल के रूप में। सदाचार और दुराचार के अंदर भी अपने मानव जीवन को व्यतीत करते हुए हम सदाचारी बन सकें और दुराचार की ओर मन न जाने पाए, यही आप भरत भगवान के चरित्र के सुनने का सार समझना। जय चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।